अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं रामायण में, रामायण की इन कक्षाओं में, कि किस प्रकार पार्वती देवी ने प्रश्न किया शिव जी से, संशय था उनके मन में कि वैसे तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब जगह सर्वविदित है, भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय, और कोई साधन है नहीं भगवान को प्राप्त करने का। फिर भी संशय है मन में कि श्री रामचंद्र ये भगवान हैं, और अगर भगवान है तो कैसे भूल गए कि वो भगवान है, ब्रह्मा जी को याद दिलाना पड़ा, और अगर वो भूल सकते हैं तो फिर हम उनको भगवान कैसे मान सकते हैं। ऐसी चर्चाएं पार्वती जी और शिव जी के बीच में हुई, और फिर शिव जी ने रामायण की कथा कहना प्रारंभ किया। वाल्मीकि रामायण का भी प्रारंभ एक श्राप से हुआ। वाल्मीकि मुनि ने एक निषाद को श्राप दिया जो दो पक्षियों को प्रेम का आदान प्रदान करते समय एक को मार डाला उसने, तो उनके मुख से एक श्राप निकला जो छंद के रूप में था, और फिर वो भाग महाभारत, क्षमा कीजिए, रामायण का पहला श्लोक बना, और फिर 24,000 श्लोकों वाली इस रामायण काव्य की रचना वाल्मीकि मुनि ने की। हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के अवतार के अलग अलग कारण होते हैं। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान कई कारणों से आते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं, भगवान भक्तों को आनंद देने आते हैं, भगवान स्वयं वीर रस का आस्वादन करने आते हैं, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कभी कभी भगवान भक्तों के श्राप को पूरा करने के लिए भी आते हैं। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया भगवान को, और फिर भगवान को रामचंद्र जी का रूप लेना पड़ा, ये हम लोग पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। कभी कभी भक्त भी श्राप दे देते हैं। हाँ, नारद मुनि ने तो ये भगवान की माया के अधीन होकर ही किया, अन्यथा भक्त कैसे भगवान को श्राप दे सकते हैं। भक्त तो केवल भक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, फिर श्राप कैसे दे सकते हैं, और ये भावना आ ही कैसे सकती है, और वो भी नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों के हृदय में। केवल भगवान की योजना, भगवान की माया शक्ति, जैसे ही भगवान ने उसको हटा लिया, नारद मुनि बड़े दुखी हुए, बड़े याचना करने लगे, और उनको समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया, अपने ही स्वामी, अपने ही भगवान के प्रति मैंने ऐसे वचनों को कहा। तो इस प्रकार से श्री राम के अवतार के अलग अलग कारण शास्त्रों में बताए गए। फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे दशरथ महाराज की, कि किस प्रकार दशरथ महाराज युद्ध किया करते दसों दिशाओं में। जब वो युद्ध करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो 10 अलग अलग व्यक्ति 10 रथों पर हैं, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। और फिर उनके विवाह की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं, पहले कौशल्या से, फिर सुमित्रा से, और फिर कैकई, नरेश की पुत्री कैकई से, जहां उन्हें कन्या शुल्क देना पड़ा, उन्होंने कन्या शुल्क दिया जिसका वर्णन हमने पिछली बार किया था। पिछली बार हम एक लोक कथा का वर्णन कर रहे थे जो बड़ी प्रचलित है, वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायणों में तो वर्णन नहीं है, मगर कभी कभी लोक कथाएं भी भगवान की लीलाओं के रस को बढ़ा देती हैं। तो वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार दशरथ महाराज बड़े दुखी थे, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सोच रहे थे मैं कैसे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करूं, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य को, अपनी प्रजा को वो एक अच्छा शासन प्रदान करके जाए। तो ये उनका कर्तव्य था और अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुत्र नहीं था। तो फिर ऐसे में जटायु ने ये सुन लिया कहीं पर कि भगवान प्रकट होने वाले हैं दशरथ के घर में। वैसे ये बात पहले से पुराणों में कही गई है, रामायण में ही इसका वर्णन आता है कि भगवान प्रकट होंगे दशरथ के पुत्र के रूप में, यज्ञ होगा इत्यादि, ये सब तो बहुत पहले पुराणों में कहा गया है। सनत कुमार इत्यादि चार कुमारों ने इसका वर्णन किया है और इसको स्वयं सुमंत्र जो उनके मंत्री हैं दशरथ महाराज के, तो वो कहते हैं कि मैंने पुराणों में ये सुना था पहले कि आपके यहाँ पुत्र होने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो देखिए, भगवान के आने की सूचना बहुत पहले से शास्त्रों में रहती है। तो जटायु ने सुन लिया, दशरथ महाराज से कहा कि आप मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दीजिए। दशरथ महाराज ने स्वीकार किया और हम लोग चर्चा यहाँ तक पहुँचा चुके थे कि अब वापस आए अपने पुत्र को मांगने के लिए। रामचंद्र जी का जन्म हो चुका था और उस समय पुत्र को मांगने आए तो दशरथ ने इनकार कर दिया कि बड़े पुत्र क्या, एक भी पुत्र नहीं दूंगा। तो बड़े दुविधा में हो गए, अपने वचन को पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीत रही है, लेकिन दूसरी ओर श्री रामचंद्र से आसक्ति त्याग नहीं सकते थे। वैसे भी जब हम लोगों के घरों में पुत्र होते हैं, जिन माता पिताओं के, वे अपने पुत्र से बहुत आसक्त होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति साधारण पुत्र से बहुत आसक्त हो सकता है तो फिर स्वयं भगवान जिसके पुत्र बने हों उसको कितनी आसक्ति होगी अपने पुत्र से। तो फिर श्री रामचंद्र वहां पर आए, पूछा क्या बात है। तो जटायु ने कहा कि तुम्हारे पिता धर्म का पालन नहीं कर रहे, उन्होंने वचन दिया था कि अपने बड़े पुत्र को वो मुझे देंगे, लेकिन अब वो दे नहीं रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे पिता हमेशा धर्म का पालन करते हैं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं आपका पुत्र हुआ। और उन्होंने कहा कि एक पिता को पुत्र की आवश्यकता कब पड़ती है, जब पिता की मृत्यु होती है, उस समय पिता को अपने पुत्र की आवश्यकता पड़ती है अग्नि देने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आज से मैं आपका पुत्र हूँ और जब आपकी मृत्यु होगी तब मैं आपका अंतिम संस्कार करूँगा, लेकिन दशरथ की जब मृत्यु होगी तब मैं उनका नहीं करूँगा। और हम जब जानते हैं कि आगे चलकर ऐसा ही हुआ था, दशरथ महाराज की जब मृत्यु हुई तो श्री रामचंद्र जी वहाँ पर नहीं थे, ना ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु की मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। तो ऐसे इन कथाओं में बताते हैं। तो खैर, दशरथ महाराज बहुत चिंतित थे, दुखी थे, और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान है, और अगर उन यज्ञों को ठीक तरह से किया जाए, मंत्रों का उच्चारण सही हो, करने वाला पुरोहित सही हो, वहाँ का जो उसके नियम है वो सारे नियमों का पालन किया जाए, तो फिर उन यज्ञों से सही लाभ प्राप्त होता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ है पुत्र की कामना से यज्ञ को करना। और वैसे भी ये त्रेता युग का समय था जहाँ हर कार्य के लिए यज्ञ किए जाते थे। हम सब जानते हैं कि अलग अलग युगों में युग धर्म बदल जाते हैं। ये जो युग हैं ये ऋतुओं के समान हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो हम हर ऋतु में अपने रहन सहन को बदल देते हैं। जैसे जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो बहुत गर्म हो जाता है, तो हमारा थोड़ा रहन सहन इत्यादि बदल जाता है। कहना चाहिए एक दृष्टि में हमारे शरीर का धर्म बदल जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब फिर हमारे शरीर का धर्म बदल जाता है, वर्षा ऋतु में बदल जाता है। ऐसे ही युग होते हैं, युगों में धर्म बदल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखय द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरि कीर्तनात्। सतयुग में केवल ध्यान, कड़ी तपस्या, ये युग धर्म था। कुछ भी कार्य क्यों ना करना हो, हर कार्य के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। इसका वर्णन हम भागवत में पढ़ते हैं कि जब विवाह भी करना हो तो दक्ष अपने पुत्रों से कहते हैं कि अब तुम्हें विवाह करना चाहिए, संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए, तो इसलिए जाओ पहले तपस्या करो। तो कोई भी कार्य करने के पहले तपस्या की जाती थी। यह कहना चाहिए कि युग धर्म ही तपस्या था, भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग था। और फिर जब त्रेता युग आया कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखये, तो त्रेता युग में यज्ञ करना हर कार्य के लिए, और बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ किए जाते थे। आज अगर संभव हुआ समय के अनुसार तो यज्ञ का वर्णन करेंगे कि महाराज दशरथ ने किस प्रकार से यज्ञ किया। एक पूरा शहर बसाया गया केवल एक यज्ञ करने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बड़े विशाल तरीके से, और कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक ये यज्ञ चलते थे। इसका वर्णन भी हम लोग भागवत में कई स्थानों पर पढ़ते हैं। और फिर जब द्वापर युग में आया तो परिचर्या आया, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, और वही लाभ, तत् वही लाभ और वही भगवान की प्राप्ति हरि कीर्तनात्, केवल भगवान के कीर्तन के द्वारा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युग धर्म है। तो जैसे हर कार्य के पहले कोई यज्ञ करते थे या ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, ऐसे इस कलयुग में हर कार्य के पहले हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और सतत लेते रहना चाहिए। यही युग धर्म है। तो जैसे अलग अलग ऋतुओं में हम शरीर के धर्म को बदलकर अपनी रक्षा करते हैं बाहरी प्रकृति के प्रभाव से, उसी प्रकार हर युग में धर्म को बदलकर हम अपनी चेतना की रक्षा करते हैं बाहरी प्रकृति या इस भौतिक प्रकृति के आकर्षण के प्रभाव से। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम युग धर्म का पालन करें। हम ये नहीं सोचें कि तपस्या भक्ति तो केवल बहुत गहन ध्यान करने से होती है। नहीं, होती थी, वो समय था। यह तपस्या करने के लिए यज्ञ करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, तपस्या करनी है, हाँ वो समय था। लेकिन आज समय है कलयुग, और कलौ तत् हरि कीर्तनात्, केवल भगवान के कृष्ण, भगवान के नाम का उच्चारण, यही चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, और इस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। और यही काफी है। हमें भगवान के धाम की प्राप्ति केवल हरि नाम करा सकता है। अगर हम भगवान के नाम में विश्वास रखें, भगवान के नाम के उच्चारण में विश्वास रखें, तो निश्चित है कि हमें हरि नाम के द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इतना शक्तिशाली है। और क्यों है? अभिन्नत्वम नाम नामिनः। नाम में और नामी में भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए शक्तिशाली है। तो भगवान के ऐसे नाम का उच्चारण अगर हम अपने जीवन भर करें, तो निश्चित है कि इस धर्म का पालन करने से अंततः भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर यज्ञ की तैयारी हुई उस युग के धर्म की। उन्होंने सोचा मुझे यज्ञ करना है। अब यज्ञ करना है तो इस यज्ञ के लिए बहुत कड़े नियम थे। कौन यज्ञ कर सकता है, यज्ञ कैसा होना चाहिए, यज्ञ में क्या क्या करना चाहिए, दक्षिणा कैसी देनी चाहिए, सारे नियम थे बड़े कड़े। अब देखिए, श्री राम को प्रकट होना था। अब अगर श्री राम को प्रकट होना है तो यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होना है और यज्ञ में से एक पुरुष आकर खीर देना चाहिए और वो खीर फिर सबको बंटना चाहिए, और वो यज्ञ भी कौन करना चाहिए? सारे मंत्रियों ने, इत्यादियों ने जब मंत्रणा की, तो ऐसा हुआ कि यज्ञ वो व्यक्ति कर सकता है जो बहुत शक्तिशाली है। तो उस समय एक बहुत विशेष ऋषि श्रृंगे उनका नाम आया, और सुमंत्र ने दशरथ महाराज को एक इतिहास बताया। दशरथ महाराज ने यज्ञ करने का सोचा, सारे मंत्रियों को बुलाया, पुजारियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, विचार विमर्श किया। देखिए, ये राजा हैं। राजा मतलब, हालांकि वो राजा थे, अपने आप निर्णय कर सकते थे, लेकिन रामायण में कई स्थानों पर यह वर्णन आता है कि जब भी उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना होता तो वे सबको बुलाया करते, सबसे मंत्रणा करते, सबसे पूछते, और जब सबकी हाँ हो जाती तब उस कार्य को करते। अभी भी उन्होंने ऐसा किया। आगे चलकर भी जब राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा उनके मन में हुई, तो वैसे राजा हैं, निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सारे अपने अधीनस्थ राजाओं को बुलाया, और फिर उनसे चर्चा विचार विमर्श करके फिर उन्होंने निर्णय लिया। तो ये राज्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कि एक योग्य व्यक्ति हो जिसके अधीन योग्य व्यवस्थापन करने वाले लोग हों, और फिर वो उनसे विचार विमर्श करके सारा व्यवस्थापन करे। जब व्यक्ति अकेले ही करने लगता है, जैसे हमने इतिहास में उदाहरण देखे हैं इस पृथ्वी पर, हिटलर इत्यादि बहुत बड़े बड़े राजा हुए, तथा कथित राजा, जिन्होंने राज्य भी किया, नेता हुए, लेकिन वे केवल अपना ही विचार प्रकट करते थे। तो इस तरह का भी एक व्यवस्थापन होता है जहाँ केवल व्यक्ति अपना ही सोच के द्वारा राज्य करता है। उसमें कभी कभी बहुत प्रगति दिखलाई देती है, लेकिन अंततः वो सफल नहीं होते। तो दशरथ महाराज ने सबको बुलाया, विचार विमर्श किया कि अब यज्ञ करना है, तो यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। और उस समय सुमंत्र ने महाराज दशरथ को ये इतिहास बताया कि महाराज, मैं आपको बताता हूँ पूर्व की एक घटना जो मैंने पुराणों में पढ़ी है और सुना भी है। सनत कुमार इत्यादि ने यह वर्णन किया है बहुत पहले कि आगे चलकर दशरथ महाराज के चार पुत्र होंगे, और वो पुत्र कैसे होंगे? वो एक बहुत विशाल यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंगे को बुलाएंगे। ऋषि श्रृंगे का वर्णन जब आता है तो थोड़ा बहुत उनके जन्म के कथा को कहेंगे कि कौन थे ये ऋषि श्रृंगे, जिनका वर्णन सनत कुमार ने पुराणों में कर दिया कि वो आकर यज्ञ करेंगे दशरथ महाराज के लिए और तभी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि श्रृंगे ये विभांडक मुनि के पुत्र थे, वन में रहा करते थे। आपको याद होगा हमने पिछली बार आपको बताया था कि राजा रोमपाद की पुत्री थी शांता, और ये शांता जो राजा रोमपाद थे, जिस दिन से ये उस नगरी में गई तो वहाँ पर अकाल पड़ गया, वर्षा आनी बंद हो गई। एक साल, दो साल, तीन साल तक कोई वर्षा नहीं हुई, तो राजा बड़े चिंतित हुए और राजा पूछने लगे अपने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से, क्या कारण है, क्या ये पुत्री के कारण हो रहा है या अन्य कोई कारण है। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में जब कुछ गलत होने लगता है तो हम उसके गलत कारण को ढूंढने के ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा तो शायद इसका कारण ये होगा, इसका कारण वो होगा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो राजा रोमपाद ने पूछा तो पता चला कि पुत्री नहीं, पूर्व में कभी उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था जिसके कारण ब्राह्मण उनके राज्य को छोड़कर चले गए थे। दरअसल ऐसा हुआ था कि एक यज्ञ किया और जब दक्षिणा दे रहे थे ब्राह्मणों को तो वो भर भर कर हीरे जवाहरात इत्यादि हीरे दे रहे थे, रत्न। तो देते देते उन्होंने देखा कि बड़ा कीमती रत्न था, तो राजा ने सोचा कि ब्राह्मण इसका क्या करेंगे। उन्होंने उसको निकाल कर अलग रख दिया और एक बहुत बड़ा उसकी जगह डाल दिया जिसकी कीमत उतनी नहीं थी। तो ब्राह्मणों को पता चल गया और ब्राह्मणों ने राजा से कहा, वैसे तो ब्राह्मण इन चीज़ों को अपने जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करते थे, लेकिन राजा का स्वभाव गलत था, कार्य गलत किया राजा ने, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया कि अब हम यहाँ पर आपके राज्य में नहीं रहेंगे। तो सारे ब्राह्मण धीरे धीरे वहाँ से चले गए और ब्राह्मणों के जाने से फिर इंद्रदेव भी कुपित हो गए और उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यहाँ हम ब्राह्मणों के महत्व को समझ सकते हैं। ब्राह्मण मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जाति का ब्राह्मण हो, जिसने केवल एक धागा पहन लिया हो और अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन नहीं हुआ है इस जगह पर। उनमें कोई शक्ति नहीं होती है, केवल दिखावा करने वाले ब्राह्मण। लेकिन यहाँ जिन ब्राह्मणों का वर्णन है वो ऐसे ब्राह्मण थे जो अपना पूरा जीवन, पूर्ण समय भगवान की सेवा में लगाते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे क्योंकि वो युग धर्म था, लेकिन अन्य समय भी केवल भगवान के सेवा में, भगवान के भजन इत्यादि में लगाते और कोई आसक्ति नहीं, इंद्रियों को संयम रखते, जितना आवश्यक है केवल उतना ही ग्रहण करते। तो ऐसे ब्राह्मणों के रहने मात्र से वो देश खुशहाल रहता था, समृद्धि रहती थी वहाँ पर। लेकिन जब ब्राह्मण चले जाते हैं, ऐसे लोग दूर हो जाते हैं, तो फिर पृथ्वी पर या उस स्थान पर अकाल पड़ जाता है। यही बात भक्तों के लिए है। जब तक इस पृथ्वी पर शुद्ध भक्त हैं, हम सब थोड़े बहुत धर्म का पालन कर पा रहे हैं, हम सब भगवान को जानने का प्रयास कर पा रहे हैं, हम सब थोड़ा बहुत सुखी रह पा रहे हैं, ये अभी उन भक्तों की ही शक्ति है जो अब पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे, जैसे जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों की संख्या कम होती जाएगी इस पृथ्वी से, वैसे वैसे पाप बढ़ेगा, कलयुग बढ़ेगा, और फिर एक ऐसा समय आएगा जहाँ, जिसका वर्णन भागवत में हुआ है, जिसको आज हम जब पढ़ते हैं तो विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा समय आएगा जहाँ केवल कष्ट होंगे, केवल दुख होंगे। आज तो हम कलयुग में हैं, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण हम कलयुग का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कलयुग प्रारंभ हो गया है, लेकिन देखिए आज भी हम आराम से बैठकर भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, ये संभव नहीं है कलयुग में, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे भक्तों की उपस्थिति के कारण जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की, केवल ऐसे भक्तों की पृथ्वी पर उपस्थिति के कारण हम लोग बड़ी सुविधा से, बड़ी आसानी से, सरलता से इस जीवन में ये भक्ति कर पा रहे हैं। तो राजा रोमपाद के राज्य से ब्राह्मण चले गए, तो अब उन्हें किसी ने ये सुझाव दिया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके राज्य में प्रवेश करे जिसने कभी स्त्री को देखा ही ना हो, ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी, जिसने स्त्री को देखा ही ना हो, जानता ही ना हो स्त्री क्या है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके राज्य में आएगा तो फिर वर्षा होगी। अब राजा सोचने लगे ये तो असंभव है, अरे कोई भी पुत्र हो उसने अपनी माँ को तो देखा ही होगा, चलिए बाहर नहीं देखा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई ऋषि, ऐसा कोई ब्रह्मचारी जिसने अब कभी कोई स्त्री को देखा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, तो ऐसे कौन है? तो बहुत से ऋषि मुनियों ने फिर उनको बताया कि एक व्यक्ति है ऐसे, और वो है ऋषि श्रृंगी। ऋषि श्रृंगी कौन है, उनका क्या इतिहास हुआ? विभांडक मुनि, इनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र के मन से, कश्यप मुनि के मन से प्रकट हुए, और प्रकट होते ही फिर तपस्या के लिए चले गए। पुराणों में वर्णन है कि ये मध्य प्रदेश का आज जो स्थान है वहां पर उन्होंने तपस्या की, तो वहां चले गए तपस्या के लिए, बड़ी कड़ी तपस्या करने लगे, बहुत तीव्र तपस्या। उनको कोई इच्छा नहीं थी इस जगत में किसी चीज की प्राप्ति की, केवल तपस्या कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको कोई इच्छा नहीं थी और कोई हृदय में। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछली बार भी जब हमने नारद मुनि का वर्णन किया था, तो जब नारद मुनि तपस्या करने लगे थे तब भी इंद्र सोचने लगे, अरे क्या हुआ, ये क्यों तपस्या कर रहे हैं? वैसे इंद्र के बहुत सारे गुप्तचर हैं, घूमते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में देखने के लिए कि कहाँ कौन, खास करके पृथ्वी और नीचे के लोकों में देखने के लिए कि कहीं कोई कड़ी तपस्या तो नहीं कर रहा है। अगर तपस्या कर रहा है तो तुरंत जाकर सूचना देते हैं इंद्र को, देखो संभाल लो, वहाँ कोई ज़्यादा कड़ी तपस्या कर रहा है, और तपस्या करके वो आप इंद्र बन सकता है, तो इंद्र तुरंत कुछ व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ भी देखा जाता है कलयुग में, हमारी संस्था में कोई अगर कड़ी तपस्या करने लगता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव हो जाता है, इंद्र भेज देते हैं किसी को, और फिर वो बेचारा अच्छी भली तपस्या छोड़कर कुछ और करने लगता है, और इंद्र फिर प्रसन्न हो जाते हैं, ऊपर से देखते हैं मैं संतुष्ट हूँ अभी। तो इंद्र ने देखा बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने भेज दिया ब्रह्मा जी के लोक से एक बहुत सुंदर अप्सरा को लेकर आए, क्योंकि विभांडक मुनि इतनी कड़ी तपस्या कर रहे थे कि इंद्र ने सोचा मेरे लोक की अप्सराएं कुछ उनके सामने नहीं कर पाएंगी, तो ब्रह्मा जी के लोक से हर्ष नाम की एक अप्सरा को लेकर आए। और उन्होंने, वैसे वो अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के लोक में जो अप्सराएं हैं वो सारी आत्म साक्षात्कारी अप्सराएं हैं, वो कोई भोग प्रवृत्ति वाली अप्सराएं नहीं है। तो उन अप्सरा स्वीकार्य कराना था कि जाकर विभांडक मुनि की तपस्याओं को भंग करें, और ये जो अप्सराएं होती हैं ब्रह्मलोक की, ये केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करती हैं ब्रह्मा जी के आदेश पर। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ इंद्र के साथ चले जाओ, तो वो आ गई। तो उन्होंने, इंद्र ने कहा कि, इंद्र जान गए कि ये तो बहुत आत्म साक्षात्कारी अप्सरा है, और अगर मैं इसको सच सच बताऊंगा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि कहीं मेरा राज्य ना चला जाए, इसलिए आप जाओ तो शायद ये करें, नहीं तो इंद्र ने बड़ा अनुनय विनय किया उनसे कि आप मेरी रक्षा करो, क्या बात है। तो बताए, वो विभांडक मुनि तपस्या कर रहे हैं और मुझे केवल इतना पता करना है कि उनके हृदय में इच्छा क्या है, क्या वो इंद्र बनना चाहते हैं, मेरा राज्य चाहते हैं। अगर मेरा राज्य चाहते हैं तो मुझे बताना, हम बहुत सारी व्यवस्था करेंगे, और अगर नहीं चाहते तो छोड़ देना, फिर कोई चिंता नहीं है। तो अप्सरा आई हर्षा, वैसे वो घबरा भी रही थी क्योंकि ऋषि मुनियों की शक्ति इतनी होती थी उस समय तपस्या के बल पर कि वे कुछ भी कर सकते थे, श्राप दे सकते थे, क्रोध कर सकते थे, उनके केवल इच्छा मात्र से बहुत कुछ हो सकता था। तो वो घबरा रही थी, हालांकि ब्रह्मलोक की वो थी लेकिन ऋषि की तपस्या से बहुत घबरा रही थी। देखिए तपस्या में बहुत बल होता है, अगर हम तपस्या करते हैं कड़ी तपस्या तो बहुत कुछ दूर कर सकते हैं, हमारे जीवन के सारे अमंगल दूर हो सकते हैं अगर हम तपस्या करें तो। बहुत बल होता है तपस्या में, शारीरिक बल भले ही ना हो लेकिन आध्यात्मिक बल मिलता है। ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में, देवी अनुसुईया, तपस्या के बल पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया था, ये वर्णन आता है पुराणों में, इसका वर्णन किया गया है एक कथा का, प्रभुपाद भी इसको अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। तो इसलिए तपस्या बहुत आवश्यक है, और ये मनुष्य जीवन बना ही तपस्या के लिए है, आनंद के लिए नहीं बना है, भोग के लिए नहीं बना है, तपस्या के लिए बना है। तो तपोबल ये बहुत आवश्यक है भगवान की प्राप्ति के लिए, तपस्या से प्राप्त हुआ बल। तो विभांडक मुनि के बल से, तपोबल से बड़ी घबरा रही थी, खैर ब्रह्मा जी का आदेश पूर्ण करना था उन्हें, तो वे वहां पर गई और उन्होंने, उनका कार्य ये था कि ये जानना कि किस प्रकार ये जो मुनि हैं ये क्या इंद्र की पदवी चाहते हैं या नहीं। तो वे वहां पर गई, विभांडक मुनि आ रहे थे, अचानक उनके सामने आ गए। विभांडक मुनि, अरे आप कहाँ से आ गए इस जंगल में, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। विभांडक मुनि कह रहे, मैं यहाँ आराम से तपस्या कर रहा हूँ, ये क्या पुत्र की प्राप्ति करनी है? तो उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की जैसे हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज आजकल होती हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दी और उससे कहा कि तुम्हें अगर पुत्र की प्राप्ति करनी है तो इससे कर लीजिए। तो खैर हर्षा को तो कोई पुत्र की प्राप्ति करनी नहीं थी, वो तो केवल इनकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था की कि जिसके द्वारा विभांडक मुनि का, विभांडक मुनि की शक्ति एक हिरण में स्थापित हो गई, और हिरण भी क्योंकि बहुत बड़े ऋषि मुनि की शक्ति थी तो हिरण ने अगले ही दिन एक बालक को जन्म दिया जिसके दो सींग थे, ऋषि श्रृंग, श्रृंग मतलब सींग, ऋषि मतलब हिरण, तो ऋषि श्रृंग मतलब ऐसा पुत्र जिसके दो सींग थे। तो उसको जन्म दिया, अब जन्म देकर, और फिर वो जो हिरण था वो भागकर विभांडक मुनि के आश्रम में गए, अब विभा और वहाँ जाके रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो विभांडक मुनि सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, आज समझ नहीं आ रहा, पहले एक स्त्री मिली कल वो कह रही मुझे पुत्र चाहिए, अभी ये हिरण आकर रो रहा है यहाँ पर मेरे आश्रम में, ये सारे लक्षण ठीक नहीं हैं। खैर वो गए पीछे पीछे तो देखा पुत्र था, अपनी शक्ति से जान गए कि पुत्र मेरा ही है। तो उन्होंने कहा कि शायद भगवान की योजना होगी कि मैं इसका पालन करूं। तो उस समय से उन्होंने ऋषि श्रृंग का पालन किया, जिस स्थान में वो रहते थे वहाँ कोई स्त्री नहीं थी, ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ उसने कोई स्त्री को देखा नहीं, वो जानते भी नहीं थे स्त्री क्या थी, और विभांडक मुनि भी बड़े सावधान रहते थे, शास्त्र पुराण उनको पढ़ाते थे और जब स्त्रियों का वर्णन आता था तो उसको छोड़ देते थे बाकी आगे की बातें करते थे, तो कभी उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, क्योंकि ऋषि श्रृंग जानते थे कि जिस दिन पता हो गया उस दिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं रहेगा, तो चाहते थे कि ये भगवान की भक्ति करे। तो खैर ऐसे उनका जीवन चल रहा था, और वो पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित थे, छोटे छोटे कार्य के लिए भी पिता से पूछते थे क्योंकि और कोई था ही नहीं उस जंगल में, केवल वो और उनके पिता। तो अब जब रोमपाद को ये पता चला तो रोमपाद ने अपने कुछ मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा जाओ ऋषि शृंग को ले आओ। तो ब्राह्मणों मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप हमारा गला काट दीजिए ठीक है, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ऋषि बड़े शक्तिशाली हैं विभांडक मुनि और अपने पुत्र को बड़ा संभाल कर रखते हैं, तो उनके पुत्र को लाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने श्राप दे दिया तो कई कई जन्मों तक हमें श्राप भुगतना पड़ेगा, आप मारोगे तो एक ही बार मृत्यु होगी। तो राजा बड़ी दुविधा में पड़ गए। फिर से चर्चा हुई कैसे लाना चाहिए, ऋषि श्रृंगी को तो लाना है। अच्छा, ये सारी कथा सनत कुमारों ने पहले ही कही थी कि किस प्रकार राजा रोमपाद उस ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में लेकर आएंगे, ये भी पहले से पुराणों में कह दिया गया था, सुमंत्र ने बताया। तो राजा विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए, कैसे लेकर आए। तो फिर कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि एक काम किया जाए, कुछ बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा जाए जो उसे आकर्षित करके हमारे राज्य में ले आए, और एक बार राज्य में आ जाए तो आप अपनी पुत्री का विवाह कर देना उससे, तो फिर तो कहीं जा नहीं सकता। तो राजा ने स्वीकार किया। तो राज्य की कुछ सुंदर स्त्रियों को चुना गया। कोई स्त्री जाने के लिए तैयार नहीं थी, कौन जाए विभांडक मुनि के पास, सब जानते थे कि वो बड़ा बड़े शक्तिशाली हैं। तो कुछ एक स्त्री ने स्वीकार किया कि ठीक है जाऊंगी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बनाई जहाँ तक जाना था पानी से उधर बीच में, और वो नाव क्या बहुत बड़ा आश्रम ही था ऐसा वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी नाव है, कोई नाव है वो पता भी नहीं चले, ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा आश्रम ही चल रहा है, और उसमें बहुत से स्त्रियों को, केवल स्त्रियां थी उसमें और सारी तपस्वी स्त्रियां, सब स्त्रियों को उसने बिठा दिया और सारी तपस्या कर रही हैं, वैसे तपस्विनी नहीं थी लेकिन थोड़े समय के लिए सारी तपस्विनी हो गई, यानी उस आश्रम में वो चलते फिरते आश्रम में केवल तपस्विनी है, कोई पुरुष नहीं, और ये सब सुंदर सुंदर स्त्रियां, और बहुत अच्छा वातावरण था पूरे आश्रम का। तो ऐसे पूरे जाकर उन्होंने जहाँ पर ऋषि श्रृंग रहते थे उसके पास में खड़ा कर दिया अपना आश्रम, पार्किंग हो गई वहाँ पर, और फिर इंतजार करने लगे कि कब ऋषि श्रृंग आए। तो थोड़े बाहर भी जाते हैं, तो एक समय ऋषि श्रृंग वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा, पहली बार उन्होंने किसी स्त्री को देखा, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था। तो वो सोचने लगे कि अरे इतना सुंदर ऋषि, ये किस प्रकार का ऋषि है, आज तक मैंने ऐसा ऋषि नहीं देखा। तो वो उसके पास गए और उन्होंने प्रणाम किया कि ऋषि आप कहाँ से आए हैं, आप आए हैं तो कम से कम मेरे पिता के आश्रम में आइए, क्योंकि आतिथ्य स्वीकार तो सीखा ही था उसने शास्त्रों से कि अगर कोई ऋषि मुनि आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, और उसने केवल ऋषि मुनि ही देखे थे तो वो समझ नहीं पाया कि ये तो स्त्री है, और वो भी वैसे ऋषि के वेश में थी। तो फिर कहा कि आइए आप मेरे आश्रम में आइए, और ये तो स्त्रियाँ चाहती थी लेकिन उस समय पिताजी थे उनके, जा नहीं सकती थी क्योंकि इसने कभी स्त्री को नहीं देखा, लेकिन पिता ने तो देखा है, पिता तो जानते हैं, तो जाना नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं फिर कभी आएंगे। फिर ऐसा एक समय आया, देवताओं ने व्यवस्था की कि विभांडक मुनि को कहीं थोड़े समय के लिए दूर जाना पड़ा, और उस समय ये जो ऋषि श्रृंग थे ये इनको अपने आश्रम में ले गए, इनको कुछ फल वल इत्यादि दिए, और फिर उन्होंने कहा कि देखो अब हम आपके आश्रम में आए हैं, आपको भी हमारे आश्रम में आना चाहिए। तो ऋषि श्रृंग ने कहा ठीक है। तो ऋषि श्रृंग आए और देखा बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं यहाँ, तो बड़े सुंदर सुंदर तपस्वी, तो बड़े आकर्षित हो गए, पूछने लगे आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन से लोक में रहते हैं, कौन से स्थान में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ रहते हैं, थोड़े से दूर हमारा स्थान है, और वहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, आप आइए उनके दर्शन के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे बातें कर करके उन्होंने मना लिया और ऋषि श्रृंग जाने के लिए तैयार हो गए, और फिर वो आराम से उसको लेकर राज्य में आई। जैसे ही ऋषि श्रृंग ने राज्य में प्रवेश किया, अपने चरणों को राज्य में रखा, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही वर्षा हुई राजा रोमपाद जान गए कि ऋषि श्रृंग आ गए हैं। तुरंत गए स्वागत करने के लिए। अब ऋषि श्रृंगी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, अचानक मैं एक स्थान में आया हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, फिर अचानक एक राजा आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और फिर राजा ने समझाया और राजा ने क्षमा याचना की कि मैं आपसे और आपके पिता से भी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। तो खैर फिर धीरे धीरे सब उसको समझ में आया, आगे चलकर विवाह भी हो गया। विभांडक मुनि को पता चला, बड़े क्रोध में आ गए जब उन्हें पता चला कि मेरे पुत्र को ले गए हैं, और अब वो राजा रोमपाद के राज्य में आए बड़े क्रोध में। तो आप सोचिए राजा की क्या स्थिति हुई होगी, राजा सोच रहे थे अब तो राजा ने बड़ी अच्छी युक्ति की, क्योंकि वो श्राप देने वाले थे कि तुम्हारे राज्य में सब कुछ जो भी है बारिश वारिश सब खत्म हो जाए, ये वो इत्यादि, और कोई सुखी नहीं रहे। तो जैसे वो आए राजा ने चरणों में प्रणाम किया और राजा ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपके पुत्र को इस राज्य का राजा बना दिया है। तो विभांडक मुनि सोचने लगे अगर अब मैं श्राप दूंगा तो फिर मेरा पुत्र राजा है, तो अब अगर मैंने श्राप दिया कि यहाँ पर अकाल पड़ जाए या तकलीफ हो तो फिर राजा को दोष जाएगा, मेरे ही पुत्र को दोष जाएगा। तो फिर वो शांत हो गए कि ठीक है श्राप नहीं देना चाहिए, और फिर उन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन फिर उन्होंने ऋषि श्रृंगे से एक बात कही कि ठीक है तुम यहाँ रहो जब तक तुम्हारी संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, जैसे ही पुत्र होगा फिर से आश्रम में वापस आ जाना। तो ऋषि श्रृंगे वहाँ कुछ समय रहे थे। तो इन ऋषि श्रृंगे को अब दशरथ महाराज अपने यज्ञ के लिए बुलाना चाहते थे, इतने ये शक्तिशाली थे ऋषि कि केवल यही कर सकते थे पुत्रेष्टि यज्ञ, तो इनको उन्होंने बुलाना चाहा। अब उधर ये यज्ञ जब हो रहा है, यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, उसके पहले पृथ्वी देवी कष्टों को सहन कर रही थी, राक्षसों का बड़ा अत्याचार हो रहा था पृथ्वी पर। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर वो भगवान के पास गए, श्वेतद्वीप में भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ठीक है मैं जानता हूँ रावण इत्यादि बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं प्रकट होऊंगा। राजा दशरथ के दशरथ एक यज्ञ करेंगे और फिर उसमें मैं प्रकट, उसके द्वारा मैं उनके घर में प्रकट होऊंगा चार रूपों में। तो ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो रावण इत्यादि उस समय बड़ा अत्याचार कर रहे थे। अब ये रावण का इतिहास क्या है, रावण कैसे इतना अत्याचारी हो गया, किसका पुत्र था, वैसे ये वर्णन रामायण के अंत में आता है। श्री रामचंद्र ने अगस्त्य मुनि से ये प्रश्न किया था कि रावण की इतनी शक्ति कैसे हो गई, जब रावण को मार चुके थे तब। तो रावण का इतिहास का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है कि रावण कौन था, क्यों इतना शक्तिशाली हुआ। तो रावण के पिता का नाम था विश्रवा, जो एक ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण से राक्षस कैसे उत्पन्न हो गया, तो विश्रवा ने दोनों की उत्पत्ति की, यक्षों की भी जिनके राजा कुबेर हुए और राक्षसों की भी जिनके राजा रावण हुए, दोनों ही विश्रवा के पुत्र हैं। इसीलिए कुबेर का एक नाम है विश्रवेण, उनको ये भी कहा जाता है क्योंकि वो विश्रवा के पुत्र हैं। तो इसका भी बहुत लंबा इतिहास है कि किस तरह से, वैसे तो ये भी बताया जाता है कि रावण अपने पूर्व जन्म में एक राजा था प्रताप भानु, और जिसको श्राप मिला था जिस कारण से वो अगले जन्म में राक्षस बना। लेकिन वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलत्स्य मुनि, और पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे विश्रवा, जिनसे रावण हुआ। तो जब विश्रवा ने विवाह किया भरद्वाज मुनि की पुत्री से, और जिनसे उनको एक पुत्र हुआ विश्रवेण या कुबेर, बहुत प्रतापी था ये, कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की। देखिए हम लोग देखते हैं कि देवता लोक में देवताओं को बहुत कुछ मिल गया इत्यादि, आसानी से नहीं। कुबेर ने बहुत तपस्या की, कड़ी तपस्या। कुबेर की तपस्या का जब वर्णन आता है तो कई कई सौ वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वो केवल जल पर रहे, फिर केवल वायु पर रहे, फिर वो भी बंद कर दिया। ऐसे बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं। तो कुबेर ने कहा कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, और भगवान की सेवा इस सृष्टि में अभी आप रचना कर रहे हैं तो लोकपाल के रूप में मैं करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पहले ही तीन लोकपाल बनाए हैं, चौथा लोकपाल मैं बनाना वाला था, तीन आने यमराज, इंद्र और वरुण, तो अब चौथे लोकपाल के रूप में मैं आपको नियुक्त करता हूँ। तो फिर कुबेर को उन्होंने नियुक्त किया, और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पक विमान भी दिया। उस समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कि ये विमान तुम्हारे लिए है, तुम जो इच्छा करोगे, जहाँ इच्छा करोगे ये जाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी चले गए अपने पिता पिता के पास, आए विश्रवा के पास कुबेर, और पूछने लगे कि ठीक है ब्रह्मा जी ने मुझे स्थान दिया है, लोकपाल बनाया है इत्यादि, लेकिन मेरे रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं किया, तो मैं रहूं कहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि एक स्थान है समुद्र में, लंका, त्रिकूट पर्वत पर है, तो तुम एक काम करो, तुम त्रिकूट पर्वत पर जाकर वो जो लंकापुरी है वहाँ रहो, वहाँ पहले राक्षस रहा करते थे, वो राक्षसों की ही नगरी थी, लेकिन अब वहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए तुम जाकर रहो वहाँ पर। तो जब ये सुना तो आश्चर्य ये होता कि क्या उससे पहले भी बहुत सारे राक्षस थे। तो हाँ, रावण के जन्म के पहले भी बहुत सारे राक्षस थे। दरअसल जब रावण का जन्म हुआ, रावण की जो माँ थी जिनका नाम था कैकसी, तो वो एक राक्षस सुमाली की पुत्री थी। दरअसल इससे कई कई हजार साल पहले जब राक्षस बड़े शक्तिशाली हुए, देवताओं ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इन राक्षसों से युद्ध किया और इनको भगा दिया था। तो उस समय सारे राक्षस रसातल में चले गए, उस लंका को छोड़कर, सुमाली इत्यादि, क्योंकि सुमाली भी तपस्या से बड़ा शक्तिशाली हुआ था, तो वो सब चले गए थे वहाँ। तो अब सुमाली थोड़े समय के लिए ऊपर आए थे। रावण का कैसे जन्म हुआ देखिए, पहले तो कुबेर का हो गया, कुबेर चले गए वहाँ पर रहने लगे, और वे पुष्पक विमान, और फिर जैसे वो वहाँ रहे और भी बहुत सारे लोग आ गए, वो पूरा भर गया वहाँ पर स्थान, और एक समय सुमाली वहाँ पर आए, रसातल छोड़कर भ्रमण करते हुए आए, और उन्होंने देखा ये त्रिकूट गिरी या लंका। वैसे ये त्रिकूट गिरी कैसे आया इसकी भी एक कथा है। एक समय मेरु पर्वत के पास कुछ गंधर्व बैठे चर्चा कर रहे थे कि कौन शक्तिशाली है, वासुकी सबसे शक्तिशाली है या वायु शक्तिशाली है या अग्नि शक्तिशाली है। तो एक ने कहा वासुकी शक्तिशाली है, नहीं तो भगवान उसको रस्सी नहीं बनाते समुद्र मंथन के समय, इसलिए वासुकी शक्तिशाली है। तो वायु आए वहाँ, वायु ने सुना तो उन्होंने कहा नहीं मैं शक्तिशाली हूँ। तो ठीक है, वासुकी को बुलाया और शक्ति का परीक्षण होने लगा। वासुकी ने मेरु पर्वत को अपने शरीर से बांध लिया और वायु को कहा कि अब तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इसको उड़ाओ। तो वायु बहुत तेज बहने लगी और उतनी ही तेजी से इन्होंने भी पकड़ लिया। तो ऐसे जब होने लगा तो हम जानते हैं कि जो मेरु पर्वत है इसके आसपास इसी पर सारे ब्रह्मांड पूरे टिके हुए हैं लोक, तो सारे लोक हिलने लगे। तो फिर उस समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने दोनों को शांत किया और कहा कि वासुकी जो तुम्हारी शक्ति है उसमें तुम श्रेष्ठ हो, और वायु की अलग प्रकार की शक्ति है उसमें वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने शांत किया। तो उस समय छोटा सा टुकड़ा उस मेरु पर्वत का इस लवण सागर में गिर गया, तो वहाँ पर ये त्रिकूट गिरी जिस पर लंका बनाई गई, बहुत सुंदर नगरी थी ये लंका। तो एक समय सुमाली आए और उन्होंने देखा कि विश्रवा का पुत्र बड़े आराम से रह रहा है, ऐश्वर्य से अपने पुष्पक विमान में जाता है, और कुबेर थे धनाढ्य, धन बहुत, तो फिर उनको थोड़ा सा हृदय में द्वेष हुआ कि ये हमारी लंका थी, उस पर ये रह रहा है। तो तुरंत गए रसातल में, अपनी पुत्री कैकसी से कहा, जो बहुत सुंदर थी कैकसी, तो उससे कहा कि देखो अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है, तो मेरी एक बात स्वीकार करो। वहाँ पर पृथ्वी पर एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है विश्रवा, तो तुम उससे विवाह करो जाकर। तो खैर कैकसी आई, और जब कैकसी आई विश्रवा के पास, तो वो संध्या का समय था और उस समय उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की। तो विश्रवा मुनि ने कहा कि देखो इस समय ठीक नहीं है, इस समय में अगर तुम कामना कर रही हो, तुमने कामना किया है, तो मैं ये बताता हूँ कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। कैकसी घबरा गई कि ये तो ठीक नहीं है, तो प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पुत्र तुम्हारा जो सबसे छोटा होगा वो भक्त होगा, क्योंकि तुमने प्रार्थना की है, लेकिन दो पुत्र तो तुम्हारे जो भी होंगे वो सब राक्षसी होंगे। तो फिर ऐसे समय, गलत समय के कारण, हालांकि विश्रवा ब्राह्मण है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आता है कि एक ब्राह्मण से राक्षस कैसे उत्पन्न हो गया, और वो भी बड़े शक्तिशाली ब्राह्मण थे। विश्रवा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बड़े तपस्वी थे, तो फिर तपस्वी से ब्राह्मण कैसे, राक्षस कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि समय गलत था। कैकसी ने गलत समय पर गलत प्रस्ताव रखा और इसी कारण से राक्षस उत्पन्न हुए। दूसरे शब्द, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें तो उत्पत्ति करनी ही थी राक्षसों की, तो फिर भी राक्षस हुए। लेकिन इसमें हमारे लिए एक संदेश है कि अगर ब्राह्मण भी राक्षस उत्पन्न कर सकते हैं तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि हमारा हृदय जो शुद्ध होना चाहिए, अगर उसमें हम प्रयास भी कर रहे हैं शुद्धता लाने का, हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध है, उसमें कोई विशुद्धि नहीं है, लेकिन अगर उसका उपयोग सही समय पर सही कार्य के लिए नहीं होता है, तो फिर वो राक्षस उत्पन्न कर सकती है। अर्थात अगर हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सब अगर सही कार्य में नहीं लगती हैं, सही समय पर इन्हें सही कार्य में नहीं लगाया जाए, तो फिर ये उत्पात कर सकती हैं। इसीलिए वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम बनाए गए हैं। ब्रह्मचारी आश्रम इसलिए था कि जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगे, सही समय पर उसको गुरुकुल भेज दिया जाए, ताकि ब्राह्मण से राक्षस उत्पन्न ना हो। आज हम जो देखते हैं समाज में कि राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं, राक्षस मतलब वो सिंह वाले बड़े बड़े मुख वाले राक्षस नहीं, यहाँ हृदय में राक्षस, तो ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, केवल सही समय पर उन्हें सही स्थान पर भेजा नहीं गया। अगर बालक को सही समय पर, जैसे सभ्यता थी जब 4-5 वर्ष का बालक होता था तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, तो सही समय पर जब भेजा जाता था, वो समय होता है जब बालक अपने बहुत सी चीज़ों को सीखता है, ये उम्र होती है बालक के लिए चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए। तो जब उसको गुरुकुल भेज देते थे तो बहुत जल्दी भगवान के विषय को, भक्ति को, धर्म को, नैतिकता को सीख लेता था, और फिर सही समय पर उसका विवाह होना चाहिए और सही समय पर घर को भी त्यागना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समय को व्यर्थ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक सिद्धांत हमें जीवन में लेना चाहिए कि समय व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि जहां समय व्यर्थ होता है वहां पर राक्षस उत्पन्न हो जाता है। बड़ा सरल है, आपने भगवान के लिए समय नहीं दिया, सेवा में समय नहीं दिया, आपने समय व्यर्थ किया, तो फिर तुरंत मन से एक राक्षस उत्पन्न हो जाएगा जो उत्पात मचाएगा। इसीलिए भक्तों के गुणों में एक गुण है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब जो समय बर्बाद नहीं करता। भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, जो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। हर क्षण हर समय भगवान की सेवा के लिए देता है। तो इसीलिए समय का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज समय पर करनी चाहिए। जैसे हम लोग सोते हैं तो समय पर सोना चाहिए, उठते हैं तो समय पर उठना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान का जप, भगवान की आरती, सब कुछ समय पर होना चाहिए। हर चीज़ का समय है, क्योंकि समय भी तीन गुणों में विभाजित है, और गुणों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, हमारे गुण और जो साधारण बाहर के गुण हैं, जब वो उनका समन्वय होता है तो फिर कार्य जल्दी और अच्छा होता है। उदाहरण के लिए भक्ति के कार्य जब हम सुबह के समय करते हैं तो बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। आप सबको अनुभव होगा, हम सब जप करते हैं सुबह में, जब जप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन वही जब जब दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, रात को करते हैं, तो बोझा बन जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे गुण और बाहर के गुण का समन्वय नहीं हो पाता। सुबह का समय सत्व गुण का होता है, इसलिए सारे भक्ति के कार्य सुबह के समय करने चाहिए। बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय सोता है, शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमकर देखते रहते हैं कि कौन कौन सो रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय, फिर उसको दंड देते हैं। खास करके भक्त, प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि अगर हमें प्रगति करनी है तो भक्त, मतलब प्रभुपाद बहुत स्पष्ट लिखते हैं, वो नहीं जो देर तक सोता है। ये नहीं कि हम 6 बजे तक 7 बजे तक सोएं, प्रभुपाद लिखते हैं 7 या 9, ऐसा कुछ लिखा भी मैं ठीक से ध्यान नहीं, प्रभुपाद ने लिखा कि ये भक्त नहीं है, सुबह जल्दी उठना चाहिए मंगल आरती के समय। तो आप लोगों को भी पालन करना चाहिए। हाँ, अगर हम मंदिर ना भी आ सकें, कम से कम घर में ही उठकर हमें जल्दी जप करना चाहिए। मंदिर आ सके तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए समय का पालन, तो कैकसी ने गलत समय पर ये प्रस्ताव किया तो उसके कारण उसके पुत्र हुए। तो बड़ा पुत्र हुआ रावण, जब पहला पुत्र हुआ तो वर्णन किया है वाल्मीकि मुनि ने कि सारे ब्रह्मांड में उत्पात मच गया, सब जो गीदड़ इत्यादि थे वो सब रोने लग गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, आंधी तूफान आ गया, देवता हैरान हो गए क्या हुआ, ये रावण का जन्म हुआ, क्योंकि आगे आकर बहुत आतंक मचाने वाला है। कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जब विभीषण का हुआ तो ऊपर से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, क्योंकि भक्त का जन्म हुआ था। शूर्पणखा का भी जन्म हुआ, विभीषण सबसे छोटे थे। तो जब जन्म हुआ, अब थोड़े बड़े हुए, विभीषण बचपन से ही भक्त थे, बचपन से साधु स्वभाव। अब थोड़े बड़े हुए तो कैकसी ने देखा कि किस प्रकार, तब तक जो सुमाली इत्यादि थे नीचे रह रहे थे, उन सब ने देखा कि अब ये लोग तपस्या के लिए गए हैं। रावण इत्यादि ने बड़ी कड़ी तपस्या की, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, उसने भी तपस्या की, और विभीषण, ये सब तपस्या के लिए गए। और कैसी तपस्या, कुंभकर्ण गर्मी के समय में, कड़ी गर्मी होती तो चारों ओर अपने अग्नि लगा लेता और फिर उसमें बैठ जाता, जब वर्षा होती तो पद्मासन लगाकर बाहर खुले में बैठ जाता, पूरे समय वर्षा होती रहती और वो पूरे वर्षा में बैठता, जब ठंड होती तो ठंडे पानी में जाकर वहां पर तपस्या करता। हम लोग अभी गए थे बद्रीनाथ, तो वहां बहुत ठंड थी और कोई भी प्रवेश करना नहीं चाह रहा था पानी में, ऐसा लग रहा था कि मानो वो बस हाथ लगा दिया तो बहुत हो गया, गंगा स्नान हो गया। लेकिन उस समय वो इतने ठंड में, ठंडे पानी में बैठकर वहीं तपस्या किया करता था, बहुत कड़ी तपस्या की उसने। तो ऐसे कुंभकर्ण ने तपस्या की, विभीषण ने भी बड़ी कड़ी तपस्या की, 5000 वर्षों तक वो केवल एक पांव पर खड़े रहे, और अगले 5000 वर्षों तक दोनों हाथ ऊपर करके, सिर ऊपर करके उन्होंने तपस्या की। विभीषण ने भी कड़ी तपस्या की, शूर्पणखा ने की, रावण ने की। रावण 1000, हर 1000 वर्ष पूरा होने पर अपना एक सर काट देते थे। वैसे रावण का नाम रखा गया था दशग्रीव, जिसके 10 सिर थे जब पैदा हुआ था। तो रावण अपना सिर काट देता एक, फिर 1000 वर्ष तपस्या हो जाती, फिर और एक काट देता, ऐसे 9 सिर काट चुका था, अब 10,000 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, 10वां सिर काटने ही जा रहा था कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत है, 9 सिर बहुत है तुम्हारे, क्या चाहिए बताओ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से। तो रावण ने कहा सरल, मरना नहीं चाहता बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, आप ये बात दे दीजिए मरूँ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हो नहीं सकता। तो फिर रावण ने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम कोई दैत्य, कोई यक्ष, कोई देवता, कोई गंधर्व, किन्नर इत्यादि मुझे ना मारे, मनुष्यों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, तो उनसे मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन ये सब मुझे नहीं मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, विभीषण को पूछा क्या चाहिए, तो विभीषण ने कहा कि बस मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरी मति सदैव धर्म में लगी रहे, मैं सदैव धर्म करूं, धर्म का पालन करूं, कभी धर्म से विचलित ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और फिर कुंभकर्ण के पास जाने लगे, तो सब लोगों ने, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से आप कृपा कीजिए, क्या हुआ, अरे ये अभी इतना शक्तिशाली है। वाल्मीकि मुनि ने वर्णन किया कि देवता कहने लगे कि ये 7 अप्सराओं को, कई देवताओं को ऐसे ही खा चुका है, जब इसकी भूख लगती है तो ऐसे ही खा जाता है, अब और आप उसको वरदान दे देंगे तो फिर क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया, कहा जाके उसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। तो फिर ब्रह्मा जी गए उसके पास, हाँ बोलो क्या चाहते हो, बोले मैं सोना चाहता हूँ, बोले ठीक है तथास्तु, सो जाओ। और चले गए ब्रह्मा जी बोलकर। वो सोचने लगे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या मांग लिया, 10,000 की कड़ी तपस्या के बाद ये मांग रहे कोई, सोना चाहता, इसलिए सोता था वो। तो ऐसे इनकी तपस्या को देखकर सुमाली को जब पता चला कि ये लोग इतनी कड़ी तपस्या कर चुके हैं, तो अब सुमाली ने सोचा कि अब राक्षसों को शक्तिशाली होना चाहिए। तो फिर सुमाली अपने सारे राक्षसों को लेकर लंका में आए रहने के लिए, और उस समय उन्होंने रावण से कहा कि तुम जाकर अपने भाई पर आक्रमण कर दो, देखो तुम्हारा भाई कितना ऐसे रह रहा है, तुम इतने जाके आक्रमण। रावण ने मना कर दिया, रावण ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा भाई है वो, मैं कैसे मार सकता। तो सुमाली को चुप होना पड़ा, लेकिन फिर आगे चलकर किस तरह से रावण ने आक्रमण क्यों किया बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबकि रावण नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने आक्रमण किया अपने ही भाई के ऊपर, तो ये क्यों किया और आगे की कथा हम लोग अगले मंगलवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तभी भगवान के दर्शन और कीर्तन होंगे।